हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 45 रात का वक्त। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और उसे बंगले का वो पार्टी हॉल जो कुछ घंटे पहले तक इतना ज्यादा भरा हुआ था और वहां इतनी चहल पहल थी, अब वो एकदम ही खाली हो गया है। कोई भी वहां पर नहीं है, सिर्फ अनय, अक्षत, नैना और स्वीटी अरुण ही वहां पर बचे हैं। और अब तो अक्षत, नैना भी वहां से निकलने की ही तैयारी कर रहे हैं। स्वीटी का तो रो रोकर बुरा हाल है, वो साइड में खड़ी होकर वहां पर ही रो रही है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ और उसके अपने माँ बाप ने आदित्य के लिए ये सब कुछ प्लान किया उसे करने के लिए, और उसके बाद आदित्य ने भी उन सबको पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उनके कन्फेशन का उसके बॉडीगार्ड ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और फिर शूटर ने भी बयान दे दिया कि चाचा जी का ही इन सबके पीछे हाथ था। विवान पहले ही वहां से बाहर निकलने के लिए गया है और अक्षत नैना के वहां आने का वेट कर रहा है। वो दोनों बस आदित्य से मिलने के लिए ही खड़े थे। नैना ने आगे आते हुए कहा, आदि सोना सो गई है, मैं अभी उसे देखकर आई हूँ, हो सके तो उसे इन सब के बारे में मत ही बताना, और मुझे ऐसा लगता है कि उसे शायद कुछ भी पता नहीं चल पाया है। नैना की बात सुनकर आदित्य धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, क्योंकि वो रूम साउंड प्रूफ था और यहाँ पर की कोई भी आवाज़ उसे कमरे के अंदर तक सुनाई नहीं देती, और मैं खुद ही सुनैना को सेफ रखने के लिए वो रूम बाहर से लॉक कर दिया था। आदित्य ने नैना को ये बात बताई और उसकी बात सुनकर नैना ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर नैना अक्षत के साथ वहां से निकल गई। नैना को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि आदित्य के रहते सुनैना को कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए उसे सुनैना की अब उतनी ज्यादा तो फिक्र नहीं है, लेकिन उसे आदित्य के लिए बहुत बुरा भी लग रहा है कि उसके रिश्तेदार ऐसे निकले जो कि उसे मारना चाहते हैं और उसकी प्रॉपर्टी पर उन सबकी नज़र है। उन लोगों के वहां से जाने के बाद आदित्य सीधा सुनैना के कमरे की तरफ ही बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र वहां पर खड़ी होकर रोती हुई स्वीटी की तरफ पड़ी, जिसे कि उसके कान में कुछ बोलता हुआ अरुण शायद चुप करवा रहा था। लेकिन स्वीटी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, तो वो रोना कैसे बंद करती, क्योंकि खुद उसके अपने परिवार वालों ने ये सब कुछ किया जो कि वो सपने में भी सोच नहीं सकती थी। वो पहले ही आदित्य के लिए अपनी मम्मी पापा के लालची बर्ताव को लेकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा रहती थी, लेकिन आज तो उन दोनों ने हद ही पार कर दी। प्रॉपर्टी और पैसों के लिए आदित्य को जान से मारने की कोशिश, क्या सच में किसी की जान इतनी सस्ती होती है? स्वीटी की नज़र में तो नहीं। आदित्य आगे बढ़ा और उसने स्वीटी का हाथ पकड़कर धीरे से उसके सिर पर अपना एक हाथ रखा और बोला, स्वीटी पगली कहीं की, तू क्यों रो रही है? मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए अब रोना बंद कर दे। हाँ जीजू, मैं भी इतनी देर से इस पागल लड़की को यही समझा रहा हूँ, लेकिन यह है कि बस रोए जा रही है और मेरी बात सुन ही नहीं रही। स्वीटी की ही साथ उसके साइड में खड़े हुए अरुण ने आदित्य की तरफ देखकर शिकायत करते हुए बोला, तो उसकी बात पर आदित्य हल्का सा मुस्कुराया लेकिन कुछ भी नहीं बोला, और वो वहां से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही अनय भी वहां पर आ गया और आदित्य से बोला, आदि, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे लगता है तुम्हें अब अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और इस तरह से बिना बॉडीगार्ड के तुम्हें नहीं घूमना चाहिए। अनय की सलाह पर आदित्य ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कुछ देर उसके बात करने के बाद वो सीधा सुनैना वाले रूम की तरफ ही बढ़ गया, जहां पर सुनैना अब तक सो चुकी थी। दूसरी तरफ मनस्वी का घर। वो बस अभी अभी अपने घर वापस आई है, आज वहां पार्टी में जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों के बारे में सोच रही है। उसका बॉडीगार्ड अभी भी उसके घर के दरवाजे पर रुका हुआ है। मनस्वी ने उसे वहां से जाने के लिए बोल दिया है, लेकिन वो अब तक वहां से नहीं गया है और वो वहां पर खड़े होकर कुछ सोच रहा है, और तभी दरवाजा खोलकर वो एकदम से ही अंदर आ गया। मनस्वी अभी तक अपने रूम में नहीं जा पाई थी, इसीलिए उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो अंकित वहां पर आ रहा था। उसे देखकर मनस्वी को आज पहली बार पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लगा। मनस्वी अपनी जगह से आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने की आहट हुई उसने रखकर पीछे मुड़कर तरफ देखा तो वहां पर अंकित था, और उसे देखकर मनस्वी ने थोड़ी राहत की सांस ली। अंकित, तुम वापस क्यों नहीं गए? तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कहा था ना तुम चले जाओ, मनस्वी ने अंकित को अपने पीछे आते देखकर कहा। तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चले जाऊं? अंकित मनस्वी की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही अजीब ढंग से बोला, और उसकी ऐसी बात सुनकर मनस्वी को एकदम ही सदमा लगा। वो अपनी जगह से पीछे हट गई और उसकी तरफ देखकर बोली, क्या क्या बोल रहे हो तुम अंकित? इतना बोलते हुए मनस्वी ने उसकी तरफ देखा तो वो अपनी बात को कवर अप करते हुए बोला, अरे मेरा मतलब है अकेले अकेले तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं रहोगी, तो तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड के आने तक मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। अंकित, उसका नाम इज्जत से लो, वो तुम्हारा बॉस है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, मनस्वी ने उसे लगभग डांटते हुए कहा। तो पहले उसका मुंह बन गया, लेकिन अवेलेबल कुछ सोचते हुए अंकित एकदम आगे आया और उसने आगे बढ़ती हुई मनस्वी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? और जो प्यार नहीं करता है पागलों की तरह उसके पीछे पड़ी हुई हो। अंकित के इस तरह से हाथ पकड़ने की वजह से ही मनस्वी थोड़ी सदमे में थी, लेकिन फिर उसने जो बात बोली वो सुनकर मनस्वी की आंखें हारने से बड़ी हो गईं और वो उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन अंकित ने मनस्वी का हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ है, जिसे मनस्वी छुड़ा नहीं पा रही है, और उसके चेहरे पर इस बात को लेकर घबराहट एकदम साफ दिख रही है। छोड़ो छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो अंकित, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो और ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? क्रमशः